ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के हम सब बच्चों को अपना बनाया। भक्ति मार्ग में तो हम लोग गायन करते थे कि मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं आप तरस पड़ूं, परंतु बाबा ने आके ऐसे निर्गुण बच्चों को अपने गोदी का बच्चा बना के गुणमान बनाए। तो महिमा तो एक ही बाबा की है जो अपने से भी बच्चों को ऊंच रखता है, और हमारा बाबा इतना निरंकारी है जो बच्चों की महिमा भी करता है और बच्चों को नमस्ते भी करता है। ऐसा दुनिया में कोई गुरु नहीं होगा जो अपने शिष्यों को अपने से आगे रखता होवे। ऐसा कोई निरंकारी व्यक्ति नहीं होगा जो दूसरों की बैठ के महिमा करे। बाबा बच्चों को देख करके इतना खुश होता है, फूला नहीं समाता है। कहता है मेरा एक एक बच्चा चाहे फर्स्ट नंबर है चाहे लास्ट नंबर है, परंतु मेरे सारे बच्चे ही राजा बच्चे। अव्यक्त बाप दादा एक बारी कह रहे थे कि ऐसा दुनिया में कोई बाप होगा जिसके सब बच्चे राजा बच्चे हो। राजा का भी एक जो बड़ा बच्चा होता है वो ही क्राउन प्रिंस बनता है, उसको ही गद्दी मिलती है, सबको नहीं मिलती। परंतु यहां तो मेरे हरेक बच्चे को बाप दादा का दिल तख्त भी मिलता है और उसके साथ साथ भविष्य की राजाई भी मिलती है। अगर वो मेरी श्रीमत पर चलते हैं तो कंडीशन ये है बड़ी। अगर हम सदैव उसके कहने के ऊपर चलते डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा हम बच्चों के लिए तिरी के ऊपर भिस्त लेके आता है। तो इसको तिरी कहते हैं। इसके ऊपर अगर कोई चीज लाएगी तो कितना इजी होता है उठाना। अपना एक चित्र भी है ना, श्री कृष्ण नरक को लात मारता है और हाथ में स्वर्ग लेके आता है। तो श्री कृष्ण तो नहीं लाता है, पर श्री कृष्ण का बाप जरूर हमारे लिए स्वर्ग लेके आता। उसमें श्री कृष्ण भी उसका फायदा लेता है और हम भी सब फायदा लेते हैं। तो बाबा के बच्चे ये सब राजयोगी बच्चे हैं, विजय प्राप्त करने वाले हैं, विजयी बच्चे हैं। क्योंकि हम सभी को जन्म से ही बाबा ने विजय का तिलक लगा दिया है। तो जब बाबा ने हम बच्चों को जन्म से ही विजय का तिलक लगाया हुआ है तो विजय जो है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारी कभी भी पराजय नहीं हो सकती है, सदैव विजय होती है। इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते चलते अनेक अनेक सीन सीनरियां दिखाई पड़ती हैं। जीवन रूपी यात्रा में अनेक अनेक परिस्थितियां आती हैं, परंतु उन परिस्थितियों को कैसे पार करना है ये साकार बाबा ने प्रैक्टिकल में हम सभी को करके बताया। हमें कोई नया रास्ता नहीं अपनाना है। साकार बाबा जिस रास्ते पर चला हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अभी जिस रास्ते पर बाबा चले हम भी उसी रास्ते पर जब चल रहे हैं तो उस रास्ते में जो जो अड़चने आई, परिस्थितियां आई, जो जो सीन सीनरियां आई, वो हमें भी जरूर क्रॉस करनी पड़ेगी। कोई भी बात आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, बाबा कहते बच्चे नथिंग न्यू, ये कोई पहली बारी नहीं आई है, परंतु ये कल्प कल्प रिपीट होती, ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है कि बेहद के बाबा ने आकर के हम बच्चों को जो ड्रामा का ज्ञान दिया और ये पक्का करा दिया कि ये बेहद का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इसमें कोई भी बात नई नहीं है। तो जो भी समस्याएं आती है, जो भी परीक्षाएं आती हैं, इनको तुम बच्चों ने एक बारी नहीं परंतु अनेक बार पार किया हुआ है, क्योंकि कोई भी कार्य जब नया करना होता है तो मेहनत लगती है, परंतु अगर उस कार्य को घड़ी घड़ी किया जाता है तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो हमारे अंदर हिम्मत भरने के लिए, शक्ति भरने के लिए बाबा ने ड्रामा के रिपीटेशन का ज्ञान हम बच्चों को दिया। अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाने के लिए बाबा ने ड्रामा का राज समझाया। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था, क्योंकि जो भी हुआ अचानक ही होता है ड्रामा में, तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि उस समय तो सब नहीं पहुंच सके, तो बाद बाद में भी बच्चे आते रहे। तो एक बार ऐसा ही बाबा बाहर बगीचे में टहल रहे थे, उस समय तो बहुत गिने चुने बच्चे थे हम लोग। तो एक अपनी पुरानी दादी थी, तो बाबा के साथ अंगुली पकड़ के घूम रही, तो उसके मन में बहुत था कि मम्मा कैसे क्या चली गई। तो क्योंकि बाबा बोलता था, देखो ये जो एरोप्लेन का मकान बनाया है ना पांडव भवन में, यहाँ बाबा मम्मा और तुम बच्चे खड़े होके विनाश देखे, पहले से तो नहीं बोलेगा ना कि हम चले जाएंगे, तो बच्चे पहले से ही हार्ट फेल हो जावे। तो बाबा बोलता था इधर खड़े होकर के हम महाविनाश देखेंगे, ऊपर से सब दिखाई पड़ेगा। तो मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उसको बहुत, क्योंकि मम्मा और बाबा तो अति प्रिय थे बच्चों, तो उसको बड़ी अंदर में ठेस आई। तो वो बात मन में रख करके उसने बाबा से पूछा, बाबा को बताया, बाबा को कहा, बाबा ड्रामा में ना कोई कोई सीन नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्ची ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, ड्रामा को करेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, ड्रामा में एडिशन करने की भी कोई जरूरत नहीं, ये कल्याणकारी ड्रामा है और जो होता है वो कल्याण के लिए होता है और हूबहू रिपीट होता है। इसमें बाप भी कुछ नहीं कर सकता है कोई सीन कट करे, इसीलिए बाबा कहता है कि मैंने ड्रामा नहीं बनाया है, ये बना बनाया ड्रामा है और मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ। अगर बाबा ऐसा नहीं कहे ना तो हम सभी एक एक सीन जो नहीं भाएगी वो बोलेंगे कट करो, तो यही धंधा चालू रखे हाँ बाबा, फिर एक एक बात को कट करता रहे। तो इसीलिए कहता है ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है, अनादि का मतलब जिसकी आदि नहीं है और अविनाशी का मतलब जिसका अंत नहीं। तो ये ऐसा ड्रामा है जो आप रिपीट होता रहता है, सिर्फ ड्रामा के पट्टे पर चलने की आदत डालनी है। जैसा आप देखेंगे ट्रेन जो है वो ट्रैक पर चलेगी तो ठीक चलेगी, अगर ट्रैक छोड़ के चलेगी तो एक्सीडेंट होगा। तो उसी प्रकार अगर हम ड्रामा को भूल के चलते हैं तो एक्सीडेंट होता है अर्थात दुख होता है। अगर ड्रामा के पट्टे पर चलते हैं तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी जो है वो बहुत सहज रीति से चल सकती। तो अभी परिस्थिति जो है, हमने आपको बताया कि जो परिस्थितियां बाबा के सामने आई वो हमारे सामने जरूर आएगी, क्योंकि हमारा और बाबा का रास्ता एक ही है। अभी आप यहां से अगर समझो बाहर आबू रोड जाते हो, आपको जो सीनरियां रास्ते में आती है, हम जाएंगे तो हमको भी वही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता। परंतु बाबा ने उन सब बातों को कैसे पार किया, और बाबा सदैव विजयी रहा, नंबर वन में रहा, ये बात समझने की। अभी दो चीजें हैं, एक है स्वस्थिति और दूसरी है परिस्थिति। स्वस्थिति ये अंदर से आती है, परिस्थिति ये बाहर से आती है, ठीक है? दोनों का रास्ता अलग अलग है। स्वस्थिति का रास्ता अंदर का है और परिस्थिति का रास्ता बाहर का है। जब दोनों का रास्ता अलग अलग है तो उनका टक्कर होने की बात ही नहीं, वो अपने रास्ते से जा रही है, वो अपने रास्ते से जा रही है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, जो समय, जो शक्ति, जो युक्तियां हमको स्वस्थिति के लिए देनी चाहिए, परिस्थिति में उलझ के उन शक्तियों को हम परिस्थिति में लगाना चालू कर देते, जिसके कारण परिस्थिति और स्वस्थिति का आपस में क्लैश होता है। अगर हम अपनी शक्तियों को स्वस्थिति में लगावे, आगे बढ़ाने में लगावे, परिस्थिति आई और चली जाएगी, वो परिस्थिति है, वो मेरी स्थिति नहीं। परिस्थिति अर्थात साइड सीन, साइड सीन उसको ही कहा जाता है जो पास हो जाती है। साइड सीन कभी खड़ी नहीं रहती, पास होती जाती है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, साइड सीन पीछे छूटती जाएगी, आप आगे जाते रहे। तो अगर हम परिस्थिति को साइड सीन समझ के चलते हैं तो आप परिस्थिति को देख के घबराएंगे नहीं, मुंझेंगे नहीं, परंतु आप उसका आनंद ले सके। आज देखो आपको कहां भी जाना है, आप चलो अहमदाबाद ही जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आबू में आते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, हर एक को कौन सी सीट पसंद आती है, कौन सी सीट पसंद आती, विंडो वाली सीट पसंद आती, क्यों? क्योंकि साइड सीन दिखाई पड़ती। हर एक कोई टिकट लेगा तो पहले कहेगा भाई मेरे को जरा विंडो की सीट देना। तो साइड सीन देखने के लिए हम खास विंडो की सीट लेते हैं। तो ये परिस्थितियां सब साइड सीन हैं, आपको इसके लिए टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साक्षीपन की सीट पर बैठने की आवश्यकता है। जब हम साक्षी होकर के इस बेहद के ड्रामा को देखते हैं तो हमारे मन को रंज नहीं होता है, दुख नहीं होता है, परंतु हमारा मनोरंजन होता है। ड्रामा किसके लिए देखा जाता है, दुख के लिए देखा जाता है या मनोरंजन के लिए देखा जाता है? वैसा ही आप देखेंगे, कोई देख रहे पिक्चर देख रहे, समझो इसमें टीवी में ही देख रहे हैं। अभी जिसको ये भूल जाता है कि ये पिक्चर है, जो साक्षीपन की स्थिति को छोड़ देता है और देखते देखते उसका रूप बन जाता है, दुख की सीन आएगी, रोना चालू कर देंगे, खुशी की सीन आएगी, नाचना चालू कर देंगे, क्रिकेट देखते देखते भारत का भारत हार गया, इधर लोगों का हार्ट फेल हो रहा, अरे वो हारा तुम्हारा गया क्या, तुम किसके लिए देख रहे थे, मरने के लिए देखा तुमने? परिस्थिति वो है और कुछ नहीं। परिस्थिति को बड़ा क्यों समझ रहे? अगर ये परिस्थितियां नहीं आवे, अगर ये परीक्षाएं नहीं आवे, तो हमारे में कौन सी शक्तियां हैं और कितनी कमी है कैसा मालूम पड़े। आज स्टूडेंट को डिग्री चाहिए, पढ़ाई पढ़ता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, और टीचर को बोले तू मेरी परीक्षा नहीं लेना, नहीं लेगा तो तुम बरसों उसी क्लास में बैठे रहेगे। वो परीक्षा लेगा तभी तो मालूम पड़ेगा हम पास है या फेल है। परीक्षा इसीलिए तो हमारा पढ़ाई के ऊपर अटेंशन रहता है। बच्चे देखो परीक्षा नजदीक आती है, सिर्फ उनकी नहीं उनके माँ बाप की भी परीक्षा होती है, वो भी जागते हैं उनके साथ, बच्चे पढ़े पढ़े पढ़े। अरे क्यों? क्योंकि उनकी परीक्षा है। तो यहाँ वो तो बरस में, छह मास में, तीन मास में उनकी परीक्षाएं आती है, यहाँ आपकी और हमारी तो हर घड़ी परीक्षा होती, रोज कोई ना कोई परीक्षा है ही है, हम परीक्षा हॉल में ही बैठे। तो जब हमारा इतना अटेंशन रहता है कि हम है ही परीक्षा हॉल में, परीक्षा देने में हर्जा क्या है? सिर्फ अभी हम देखते हैं कि परिस्थितियां जो आती है, कौन सी परीक्षाएं आएगी या परिस्थितियां आएगी, कौन सी समस्याएं आएगी जो हमको पार करनी है, मन की आती है। बाबा ने हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अलग अलग युक्तियां बताई है, उसके लिए शक्तियां दी हुई। मन की भी बहुत बड़ी समस्या आती है, मन की उलझन आती। अभी उसको पार करने के लिए बाबा ने हमको मन मना भाव का महामंत्र दिया हुआ। मन को एकाग्र करने के लिए बाबा ने हमें फुल स्टॉप लगाना सिखाया हुआ है कि जो भी कुछ होता है वो पास्ट हो गया, जो बीत जाता है उसको क्या कहा जाता है? भूतकाल। हमेशा कहा जाता है कभी भी कोई भूत दो प्रकार के होते हैं, एक भूतकाल और एक अशुद्ध आत्माएं जो है उसको भी भूत बोलते हैं। जब ये आपको भूत आवाज देवे ना तो आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना, नहीं तो पकड़ लेगा आप। तो उसी प्रकार क्या है, भूत कैसा घूमता है बताओ? उसको शरीर है नहीं है ना, बिगर शरीर घूमता है ना। और हम जब पास्ट में जाते हैं तो ये शरीर चलता है हमारा साथ में, तो हम उस समय क्या हुआ? क्यों जाते हो पास्ट? जैसा भूत बिगर शरीर घूमता है वैसा जब भूतकाल में जाते हैं तो बिगर शरीर जाते हैं, शरीर इधर ही पड़ा है और 50 बरस पहले वाली बातों में घूम रहे हैं। तो बचाओ दुखी हो गए या सुखी हो गए? बंद करो ना ये घूमना। इसीलिए कहा जाता है भूतकाल को सोचने के बजाय, भूतकाल को याद करने के बजाय वर्तमान में जीना सीख जाओ। कोई कोई भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, अरे इतना ये कोरोना हो गया पता नहीं क्या होगा, धंधे बंद हो गए, फलाना बंद हो गया। अरे तुम क्यों फिक्र करते हैं? बाबा बैठा है, बाबा ने गारंटी किया हुआ है सारी दुनिया भूख मरेगी, तुम कभी भूख मरने वाले नहीं। क्या चाहिए तुमको? तुम तो नहीं भूख मरेगे पर तुम्हारे बाल बच्चे भी भूख नहीं मरेगे। अगर तुम्हारा 100% निश्चय है उसके ऊपर तो कंडीशन बहुत बड़ी है। अगर हमने एक कोई सहारा बनाया हुआ है, वही मेरा संसार है। बोलने के समय तो सभी यही कहते हैं ना, बाबा ही मेरा संसार है, मेरा तो एक दूसरा नहीं, कोई 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 भी नहीं ना। तो जब मेरा बाबा है तो बाबा बैठा है ना, मेरे को बाबा क्यों भूलता है? तो इसीलिए मन को एकाग्र करने के लिए वर्तमान को देखो, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप क्या करो, पुरुषार्थ करो। मन को कभी भी मैला नहीं करो, भगवान को जाकर के मंदिरों में हम प्रार्थना करते थे, भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। भगवान कहता है मैं तो किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता हूं, तुम नहीं धरो अपने मन को, मैला नहीं करो औरों के अवगुण चित्त पर धर, तुम अपने मन को सुधारो, मन में गुण रखो एक दो के, तो तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, मन तुम्हारा शक्तिशाली बन जाएगा, मन तुम्हारा प्रसन्न हो जाएगा, तो समस्या आएगी नहीं, मन भटकेगा ही नहीं। तुम्हारा मन उधर का उधर एकाग्र हो गया फिर क्यों भटकेगा? भटकता कौन है? जिसको स्थान नहीं होता है, ठिकाना नहीं होता है, वो भटकता। आज देखो क्लास पूरा होगा, आपकी भट्टी पूरी हुई, सब अपने अपने घर चले जाएंगे ना, जिसको घर नहीं होगा वो भटकता रहेगा बेचारा। पहले हमारा मन भटकता था क्योंकि ठिकाना नहीं था, अभी तो बाबा ने ठिकाना दे दिया। मन को बाप से लगाओ, घर से लगाओ, ठिकाना मिल गया, अभी भटकना छूट गया। उसके बाद तन की समस्याएं आती है, तन की परीक्षाएं परिस्थितियां आती है, बीमारियां आती है। कितना हाय हाय करते थे सारा समय, हाय पता नहीं मेरे को क्या हो गया, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, पता नहीं मेरे को क्या हुआ। कोई अभी एक किसका हिसाब किताब है, किसने किया, दूसरे को दोष देंगे, तुमने इतना मेरे को इसने टेंशन दिया ना इसीलिए मेरे को ये बीमारी हो गई, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना इसलिए मेरे को ये बीमारी हो। अरे दूसरे थोड़े ही बीमारी देते हैं, मैंने खुद को बीमारी, बीमारी को मैंने बुलाया है, कौन मेरे को टेंशन दे सकता है? भगवान जब इतना मेरा अटेंशन खींचवाता है तो भी अटेंशन नहीं है, तो दूसरा टेंशन देने वाला कौन है उससे ज्यादा, बताओ तो। परंतु हम खुद क्या करते हैं, टेंशन लेते हैं। आज कोई अच्छी चीज किसी को नहीं दे सकता है, खराब चीज क्यों ले रहे हैं हम? इतना इतना टेंशन, इतना टेंशन, इसलिए ब्लड प्रेशर हो गया, उसके लिए ब्लड प्रेशर, उसने टेंशन नहीं दिया, तुमने टेंशन लिया, इसलिए वो लिया। किसने? देने वाले ने तो दिया, पर मैंने क्यों लिया? मैंने समस्या क्यों पैदा की? शारीरिक बीमारी क्यों पैदा किया? तुम प्रसन्न रहो, तुम हल्के रहो, अटेंशन में रहो, कोई कुछ भी नहीं होगा। आज के स्लोगन में था ना, आप जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना क्या हो जाएगा, बीमारियां निकल जाएगी ना, ध्यान ही नहीं जाएगा। अभी सारा दिन अगर हम इस शरीर को ही पकड़ के बैठे रहे, आज सिर दुख रहा, आज पैर दुख रहा, आज हाथ दुख रहा, अरे बाबा ने बताया ये तमो प्रधानी दुनिया है, तमो प्रधानी तत्व है, तमो प्रधानी तत्वों से बना हुआ पुतला है, तो ये तमो प्रधानी तत्व तुम्हारे को क्या सुख देगी? क्या ये तन तुमने किसको दे दिया? बाबा को दे दिया ना, फिर बाबा जाने ना, जब उसको दे दिया हमने, हमारा काम है उसकी सेवा में लगाना। वो कहता है तुम सेवा करो, शरीर को मैं संभालूंगा, तुम सेवा करो ही नहीं तो क्यों संभालेगा तुम्हारे शरीर को? वो कच्चा नहीं है, उसका नाम भोलानाथ है, बाकी भोला बोला कुछ नहीं हो, बड़ा पक्का है वो, बड़ा पक्का है वो, तराजू है उसके हाथ में, जितना कर उतना पा। तो इसीलिए कोई तन की भी समस्या नहीं होती है, कोई नहीं समस्या होती, आपका तन सदैव तंदुरुस्त रहेगा अगर मन तंदुरुस्त है तो। उसके बाद हम देखते हैं धन, धन का भी बाबा ने गारंटी किया, उसकी कोई समस्या नहीं, आप ट्रस्टी होकर के संभालो, ये सब कुछ बाबा का है, ठगी नहीं करना बाबा के साथ, तेरा तेरा करके। मेरा भक्ति मार्ग में हमने यही किया, मंदिर में जाते थे, हे भगवान मेरा सब कुछ तेरा है, घर में आए तो तेरा सो भी मेरा, अभी ये ठगी नहीं करना उसके साथ, अभी सत्यता से उसके साथ चलना, फिर देखो कैसा संभालता है आप। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्र संबंधी हैं, उनकी समस्याएं आती, आपस में इकट्ठे रहते हैं, बगुले और हंस इकट्ठे रहते हैं, उनका स्वभाव अपना, हमारा स्वभाव अपना। परंतु बाबा ने हम बच्चों को यह समझ दी हुई है कि कोई कितना भी अपकारी होवे, तुम्हारा काम है उसके ऊपर उपकार करना। तुम अपनी उस आत्मा के प्रति मीठी दृष्टि रखो, आत्मिक दृष्टि रखो। वैसे मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, परंतु फलाने के कारण, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, इसके कारण मेरी स्थिति खराब होती है। कारण बाबा ने नहीं पूछा, निवारण बताया। किसी के कारण मेरी स्थिति खराब होती है, इसका मतलब मेरी स्थिति कमजोर है। कैसे? आज देखो हवामान चेंज होता है, ठीक है, गर्मी से सर्दी आ गई। अभी जिनके शरीर कमजोर है, तुरंत उनके शरीर के ऊपर असर हो जाएगा। सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, जो स्ट्रांग है उसको होगा। तो जैसा स्ट्रांग अगर शरीर होगा तो परिस्थिति का, वातावरण का उसके ऊपर असर नहीं होता है। वैसा ही अगर हमारी मानसिक स्थिति स्ट्रांग है, स्वस्थिति हमारी स्ट्रांग है, तो हमारे ऊपर असर होगा परिस्थिति का या किसी व्यक्तियों का? हो ही नहीं सकता। तो मेरे को क्या ठीक करना चाहिए? आप गर्मी से सर्दी आती, आप सर्दी को ठीक करेंगे या शरीर को ठीक करेंगे? उल्टा करते हैं। करना चाहिए हमारे को, आज देखो सर्दी का असर हो, अभी देखो ये भाई स्वेटर पहन के बैठा है, इसको ठंडी लगती है, प्रकाशन लेते हैं ना। तो उसी प्रकार अगर मेरे ऊपर परिस्थिति का या व्यक्तियों का असर होता है, तो मेरे को प्रकाशन लेना है, उसको मुझे दोष भी नहीं देना है, उसको करेक्शन भी नहीं देना। ये ठीक हो जावे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे वो ठीक कभी भी होने वाला नहीं है, माना मैं भी ठीक नहीं होगा। वो ठीक होगा तो मैं ठीक होऊंगा, ये सौदा नहीं करो। मुझे झुकना है, मुझे मरना है। क्यों? मुझे रियल गोल्ड बनना। रियल गोल्ड जो होता है ना, उसमें कोई खाद नहीं होती है। आप उसको ऐसा, बंगड़ी को भी ऐसा करेंगे ना, चूरा हो जाएगा उसको। इसीलिए जो भी माताएं पहन के घूमती है ना, इसमें सब खाद पड़ी हुई होती है। तो जब हमारा लक्ष्य रियल गोल्ड बनने का, तो हमारे को तो झुकने का ही है, हमारे को खुद को परिवर्तन करने का है। तो दूसरी व्यक्तियों का मेरे ऊपर या परिस्थितियों का मेरे ऊपर असर हो नहीं सकता है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि मुझे परिवर्तित होना है, मुझे बदलना है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम कहते हैं जग बदलेगा तो मैं बदलूंगा, फिर ना जग बदलेगा ना तुम बदलेगा। इसीलिए परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। अगर स्वस्थिति स्ट्रांग है, अगर हम पावरफुल है, हम परिस्थितियों को बदली करते हैं। बाबा कहता है, बच्चे मैं पतित पावन हूं, तुम मास्टर पतित पावन। मैं तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूँ और तुम अपने योग बल से प्रकृति को पतित से पावन बनाते हो। हम सारी प्रकृति को परिवर्तन करने वाले, और हम बैठ करके परिस्थितियों के अधीन होकर के चले, ये कौन सी होशियारी, ये कौन सी समझदारी है? ये कागज का शेर, कागज के शेर को रियल शेर समझ लेते हैं, डरते हैं, अरे माया आ गई, माया आ गई, माया आ गई। माया वाया क्या है? क्या है माया बताओ? माया का रूप बताओ क्या? हमारी कमजोरी है ना माया, माना हमारी विस्मृति है, हमारी कमजोरी है। माया भी सुनती है, माया बड़ी चतुर है। वो बोलती है, अच्छा ठीक है, ये अच्छा ग्राहक है मेरा। और उसको अच्छा नहीं लगता ना, हम उसको छोड़ दिया, डाइवोर्स कर दिया माया को, कि जा अभी तू। आधा कलब उसके साथ हमने साथ निभाया। आज किसी का ग्राहक, एक 6 मास का भी ग्राहक होगा किसी दुकानदार का, उसको छोड़ के दूसरी दुकान पर जाना चालू करेगा, अरे इधर आ रे, तू मेरा पुराना ग्राहक है, ले जा सामान, पीछे पैसा देना हर्जा नहीं है। हाँ, करेगा या नहीं करेगा। और ये हमने हम 2500 वर्ष जिसके साथ रहे, ये ऐसे छोड़ देगी क्या हमारे को? बाबा बोलते हैं अंत तक ये तुम्हारा पीछा करेगी, ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, पर तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुम आगे देखो, क्योंकि ये ह्यूमन रेस चल रही है। तो रेस में हमेशा देखो क्या होता है, जो दौड़ने वाले उनका ध्यान कहाँ होता है? आगे। पीछे मुड़ के दौड़ेगे तो क्या होगा, गिरेगे ना? नहीं गिरेगी। तो वैसा ही हमेशा सामने देख के चलो आप। सामने कौन है? बाबा। फॉलो फादर, बाप को फॉलो, और इधर उधर भी नहीं देखो, भाई बहनों को भी नहीं देखो, बाबा को देखो। निराकारी स्थिति में शिव बाप को फॉलो करो, साकारी स्थिति में ब्रह्मा बाप को, कर्म योगी के लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। बाबा ने कम परीक्षाएं दी? आप क्या समझते हैं, बाबा शिव बाबा ने जब प्रवेश किया उसमें, तो घर वालों ने क्या सबने उसको सहयोग दिया? धीरे धीरे समझते गए, वैसा वैसा सहयोग होता गया, समाज ने सहयोग दिया, कितना अपोजिशन हुआ, यहां तक कि अमेरिका के पेपरों में भी आया कि सिंध का एक जवेरी है, उसको 16108 रानियां चाहिए, अभी 500 मिली है और इतनी बाकी है। बोलो आज किसी में ताकत है ये सहन करने की? बाबा हंसता था। सिंध वालों ने, शास्त्रों में है ना, लाखा भवन को आग लगी तो उन्होंने मकान को आग लगाई, उसका नाम लखीराज भवन था, लाखा भवन इसीलिए आया, लखीराज भवन से लाखा भवन आया। उसको आग लगाने की कोशिश किया, लगी नहीं, पर आग लगाने की कोशिश किया, तो भी बाबा तो एकदम निरसंकल्प। बहुत घमसान करते थे, पिकेटिंग किया क्या नहीं किया इन्होंने, और फिर कर कर के बीच बीच में शांत हो जाते थे। बाबा बोलता था क्या हो गया, अभी आजकल इस सिंध वाले कुछ करते नहीं, देखो कितनी ऊंची स्टेज है। बाबा मनोरंजन करता था, वो लोग ये करते थे तो बाबा मनोरंजन करता था, और आज हम लोगों के सामने अगर छोटी सी परिस्थिति आएगी, राई को पहाड़ बना के रखेगी, नहीं पहाड़ को राई बनाना सीखो। हमारा साथी कौन है? हमारा साथी सर्वशक्तिवान है। जब बाबा हमारे साथ में है तो कोई परिस्थिति हमारे को रोक नहीं सकती है। अगर मेरा दिल का प्यार बाबा के साथ है तो हमारा बेड़ा पार ही, हमारा बेड़ा लूट सकता है पर डूब नहीं सकता है, सत्यता है। तो इतना जितना निश्चय हमको बाबा के ऊपर है, इतना खुद के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। सिर्फ बाबा के ऊपर निश्चय होके काम नहीं होगा, मैं विजयी रतन हूँ, मैं वही कल्प पहले वाला बाबा का बच्चा हूँ, इस बात का मुझे निश्चय चाहिए। निश्चय के आधार से हम पार हो जाते हैं। कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, हमारी विजय हुई पड़ी है, परंतु हम जो सोचते हैं ना, पता नहीं विजय होगी या नहीं होगी, पता नहीं विजय, ये जो पता नहीं करते ना, हमारा ही पता कट जाता है। अरे हमको पता नहीं तो और किसको पता है? हमारे बिगर किसी को पता हो सकता है क्या? तो बाबा ने हम बच्चों को जो जो युक्तियां बताई है, ड्रामा में देखो बाबा ने क्या समस्याएं क्या आती, एक दो का स्वभाव टकराता है, हाँ यही समस्या है ना, क्या करे, बनता नहीं, आपस में रहते हैं बनता नहीं है, आपस में स्वभाव टकराता है। मम्मा इसके ऊपर बड़ा अच्छा समझाती थी, मम्मा कहती थी देखो दो चीजें, एक है मटका, मटका किस चीज का होता है? मिट्टी का, और एक है घड़ा, घड़ा है पीतल का। अभी मटका अगर घड़े को टकराएगा तो क्या टूटेगा? मटका। और अगर घड़ा आकर के मटके को टकराएगा तो क्या टूटेगा? मटका ही टूटेगा ना, मिट्टी वाला ही टूटेगा ना, वो उससे टकरावे या वो उससे टकरावे। तो इसीलिए मम्मा कहती थी तुम अगर किसी से टकराओ या वो तुम्हारे से आके टकरावे तो सिर तुम्हारा ही फूटने वाला है, उसका नहीं फूटेगा। इसीलिए किससे कभी भी टकराना नहीं। आप थोड़ा रास्ता बदली कर डालो। देखो जो होशियार ड्राइवर होता है उसमें ये कला होती है, वो जब ड्राइविंग करेगा तो ध्यान रखता है। समझो कोई सामने वाला बेसमझ है और वो सीधी गाड़ी लेके उसकी तरफ आ रहा है, उस समय वो ब्रेक नहीं लगाएगा कभी भी, वो थोड़ा डाइवर्शन ले लेगा, रास्ता थोड़ा बदली कर डालेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट से बच जाएगा। तो उसी प्रकार हमको भी ये देखना चाहिए किस बात के कारण ये टकराते हैं, थोड़ा बदली कर डालने का, थोड़ा खुद को बदली कर डालने का, क्योंकि मैं बदलूंगा तो जग बदलने वाला है। हमारा स्लोगन ये नहीं है कि जग बदलेगा तो मैं बदलूंगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो फिर चाहे घर में रहो चाहे जान में रहो कहां भी रहो, हमको मरना ही पड़ेगा। पाताल में जाएंगे तो भी झुकना पड़ेगा, आकाश में जाएंगे तो भी झुकना पड़ेगा। तो जब ये हम पक्का कर लेते हैं ना, कोई परिस्थिति नहीं होती, परिस्थिति आती नहीं है, दूर से ही भाग जाती है, डरती है अपने से। परंतु क्या करते हैं, कोई बात होती है उस बात को खींचते हैं, सोचते हैं। बात ये रबड़ जैसी होती है, आप रबड़ को खींचो, इतनी सी रबड़ है उसको खींचो, तानो, जितना तानेंगे उतनी बड़ी होती चाहिए। यस आई एम, छोटी सी बात होगी उसको तान तान के, सोच सोच के, बोल बोल के उसको बड़ा पहाड़ बना के रख देंगे। अरे इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई हमारे आगे, हमको तो मालूम भी नहीं था। अभी जैसा देखो ये बीमारी आई, अभी जिनका पढ़ाई के ऊपर अटेंशन था पहले से ही लेके, क्योंकि बाबा ने पहले से सब इन एडवांस बता दिया कि ऐसा समय आएगा तुम घर के बाहर नहीं निकल सकेगे, ऐसी बीमारियां आएगी उसकी दवाइयां नहीं होगी, फटाफट लोग मरेंगे, बाबा ने सब बताया हुआ है। परंतु जिनका पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है, अरे ये क्या हो गया अचानक, हमको तो मालूम नहीं था ऐसा भी होगा और इतना जल्दी होगा कि अरे कितना कभी होना चाहिए ये तो बताओ, अभी नहीं तो तुम क्या समझते कितने बरस और चाहिए तुमको। कब से बाबा आया हुआ है, कब से समझा रहा है और अभी भी फिर ये कर रहे हैं, पता नहीं भाई कैसा क्या हो गया क्या, वो पता नहीं अपना एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और जिन्हों का पढ़ाई के ऊपर अटेंशन है उन्होंने अपनी स्थिति को परिपक्व बना लिया कि ठीक है बाबा ने जो कहा था वो समय आ गया, हमारा काम है एवर रेडी रहना, हमारा काम है हमारे ऊपर अटेंशन देना, ना कि हमारा काम पता नहीं करते रहना। तो इसीलिए बाबा जो हमें युक्तियां बताते हैं स्वस्थिति के लिए, उन युक्तियों को हमें कार्य में लाना है, उन युक्तियों को हमें काम में लाना है, युक्ति से ही हमको मुक्ति मिलेगी। कमजोरियों की मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम बाबा की युक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। आप दवाई को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ, फायदा कैसा पड़ेगा। डॉक्टर ने दवाई दिया, आपने जाके फ्रिज में रख दिया और फिर डॉक्टर को बोलो डॉक्टर क्या है हमारे को तो कोई फायदा नहीं हुआ। अरे तुमने दवाई लिया ही नहीं, दवाई रखी है, देखते रहो फिर उसको बैठ के। तो यही हुआ ना, बाबा ने इतना जो ये ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं है ये ज्ञान, बहुत बड़ी औषधि है ये ज्ञान, बहुत बड़े शस्त्र है ये ज्ञान, बड़े रतन है ये, सोर्स ऑफ इनकम है ज्ञान। ज्ञान क्या नहीं, ज्ञान का आप देखो तो सही कितना महान है ये संजीवनी बूटी है, कोई मूर्छित हो गया उसको सुंगाओ देखो वापस आ जाएगा। तो जिस हिसाब से बाबा ने हमको दिया हुआ है उसको वैसा इस्तेमाल करना आना चाहिए। आज योद्धे के पास बहुत रिफाइन अस्त्र शस्त्र है पर उसको अक्ल ही नहीं है अस्त्र शस्त्र चलाने कैसा है, तो हार होगी या जीत होगी उसकी। तो बाबा ने हमें ये शस्त्र दिए हुए हैं कि कौन सी परिस्थिति आवे तो उस समय तुम क्या करो। शास्त्रों में बताते हैं ना कि वो असुरों ने अग्नि अस्त्र चलाया तो देवताओं ने जल का शस्त्र चला दिया, तो बाबा ने हमको बताया है कौन सी परिस्थिति आने से क्या यूज करो, कौन सी परिस्थिति आवे उस समय तुम क्या करो। अगर हम बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उसका हम मनन चिंतन नहीं करते, वो हमको स्मृति में नहीं रहता, सुनने में बहुत मजा आता है परंतु सुन करके उधर का उधर पूरा हो जाता है, भूल जाते हैं। पर अगर हम उसके ऊपर सोचते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, तो वो एक शक्ति का रूप ले लेते। ज्ञान ये शक्ति है। ये कौन सी शक्ति? विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति। युक्तियां बताई हुई है बाबा ने, हर प्रकार की युक्तियां बताई हुई। ड्रामा, एक आप ड्रामा को ही ले लो, देखो बाबा ने ड्रामा कितना अच्छा हमें स्पष्ट करके बताया, ये वैरायटी ड्रामा है, इसमें हर एक कोई आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रहा है। उस दिन बाबा बोल रहा था, फलाना मर गया, तुम क्यों रोते हो, तुम्हारा क्या गया? याद है आप लोगों को, तुम्हारा गया क्या? बोला, तुम क्यों रो रहे? वो मरा ना, गया ना, तुम्हारा गया क्या? हमारा ये गया क्योंकि हमने उसको अपना समझा। अपना भी रोते क्यों है? अरे बहुत अच्छा था, कमाता था, लेके आता था, घर चलाता था, चला गया तो रोएगा ना? बिचारी अच्छी थी, रोटी पकाती थी, बच्चों को संभालती थी, वो चली गई, मेरे को मुसीबत पड़ गई, इसलिए रोते। हर एक को स्वार्थ के लिए रोता है, बाकी कोई किसी के ऊपर प्यार है ऐसी नहीं बात समझो। ये दुनिया ही स्वार्थी है, स्वार्थी दुनिया में स्वार्थ ही स्वार्थ है। आपको निस्वार्थ बाबा के बगैर कोई नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए हमारे को हमारी कमाई करनी है, हमारे को अपनी स्वस्थिति को प्रबल बनाना है, क्योंकि स्वस्थिति के आधार पर ही हमारे को भविष्य में पद मिलने वाला। तो इसीलिए अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए ड्रामा के राज को जानने की आवश्यकता है। आज देखो आप 3 घंटे का ड्रामा देखते, मेरे जैसा ही आपको 8 व्यक्ति, मेरे जैसा ही ड्रेस, मेरे जैसा ही बोलना, मेरे जैसा ही एक्शन, आपको बोर हो जाएगा। ये क्या है? ये ड्रामा? ड्रामा माना वैरायटी, इसमें सब अलग अलग चाहिए। तो ये ड्रामा है ना, इसमें सब वैरायटी है, इसमें सब प्रकार के लोग हैं। तो हमारे को उसमें से आनंद लेना चाहिए, ना कि हमारे को हलचल में आना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे? बाबा बोलता है, तुम बच्चों के आगे तो भक्तों की क्यों लगनी चाहिए? अभी हम ही क्यों में खड़े तो हमारे आगे क्यों कौन सी लगेगी? क्यों, क्या, की क्यों? बाबा ने उस दिन बड़े मजे की बात बताई। बाबा ने कहा, देखो ये मेरा धरती का तारा मंडल, इसमें ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान चंद्रमा भी है, ज्ञान सितारे भी है, पर इसमें पुच्छड़ सितारे भी है। पुच्छड़ सितारे समझते हैं ना, जो पूछ होती है बड़ी, वो बहुत नुकसानकारक होता है प्रकृति के ऊपर भी और व्यक्तियों के ऊपर भी। तो यहाँ मेरे पास भी पुच्छड़ सितारे, सारा दिन पूछ पूछ करते रहे, इसने ऐसा क्या किया, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्या किया, ये सारा दिन उनका यही चलना। ऐसा पुच्छड़ सितारा नहीं बनना, सामने वाले को भी भारी पड़ता है, अरे सारा दिन इसका क्यों, क्या, क्यों, क्या। तो जो खुद ही क्यों में खड़े उसके आगे क्यों काय की लगेगी, बताओ? आज समझो मैं दूध के क्यों में खड़ी, बॉम्बे में तो क्यों लगती है हर एक चीज, तो दूध लेने के लिए मैं क्यों में खड़ी हूँ, मेरे आगे कोई क्यों थोड़ी लगेगी। तो वैसे ही आज अगर मैं औरों के लिए, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों, क्या में ही अगर मैं मूंजी हुई हूँ, तो भगत कहाँ आएंगे मेरे आगे आके खड़े रहे। तो इसीलिए हरेक का अपना अपना पार्ट है, क्यों, क्या सब छोड़ दो, फुल स्टॉप लगा दो, आगे बढ़ते जाओ। परिस्थिति को साइड सीन समझो, उससे अपना मनोरंजन करो। साइड सीन कभी भी खड़ी नहीं रहती, वो पास हो जाती। सब दिन होता ना एक समान, सदैव एक जैसी सीन नहीं चलती है, सीन ये परिवर्तन होती रहती है। सीन भले परिवर्तन हुए परंतु मेरी स्थिति कभी परिवर्तित न हो। हमें हमारी स्थिति को मजबूत रखना है, हमारे को एक बल एक भरोसा रखना है, और अपनी स्थिति को अचल और अडोल रखना है। इसीलिए तो ध्रुव सितारा इतना गाया गया है ना, वो मम्मा की यादगार है ना, उसने कभी जगह नहीं छोड़ी। मम्मा ने कभी अपनी स्थिति को डगमग नहीं किया, सदैव अचल और अडोल रही। तो वैसा हमें भी सदैव अचल और अडोल रहना है, एक रस रहना है, एक के साथ सर्व संबंध जोड़ के रहना है, एक से सर्व संबंध निभाने हैं हमको, और सर्व के साथ रहते हुए सदैव न्यारा और प्यारा रहना। पहले न्यारा होना है, पीछे प्यारा बनना है। तो कह रहे बाबा बोलते हैं तोड़ निभाओ, कोई तो तोड़ डालते हैं, कोई तो निभाने में ही लग जाते, निभाते निभाते खुद ही निभ जाते, और कोई तोड़ के सूखे सन्यासी बन जाते। अरे जब से ज्ञान में जाते हैं एकदम रुखे हो गए, ऐसा भी नहीं बनना है। बैलेंस रखो, आज दो टांगों का बैलेंस नहीं होगा तो हम खड़े नहीं हो सकेंगे, चल नहीं सकेंगे। तो इसीलिए न्यारेपन का भी बैलेंस हो, प्यारेपन का भी बैलेंस, हर बात का बैलेंस सिखाया है बाबा ने। प्रवृत्ति में भी रहो और प्रवृत्ति में रहते हुए सर्व से निवृत्त भी रहो। प्यार सबसे करो पर दिल का प्यार एक बाबा के साथ रखो। जब ये बातें हमें याद रहती है, आप अंदर ही अंदर इन बातों का चिंतन करो, फिर आपको खुशी होगी कि बाबा ने देखो कितना सहज मार्ग बताया हुआ है। ओम शांति।